हरे कृष्णा। सो आप सब के आभारी हैं, आप सब आए, बहुत कष्ट लेकर आए और आगे भी कष्ट होने वाला है कुछ दिनों तक, और आप सब तैयार भी हैं उसके लिए। तैयार है ना? कितने लोग तैयार नहीं हैं? ओके देख लिए, तैयार नहीं है अभी भी हाथ उठा दीजिए। यात्रा कमेटी के लोग देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये देखेंगे कि तैयार है तो और कष्ट देने के लिए वो लोग भी तैयार हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को आदेश दिया था। चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों को आदेश दिया, वृंदावन जाइए, वहाँ की लीला स्थलियों को प्रकट कीजिए। लीला स्थली जा चुकी थी और लीला स्थलियों को प्रकट करके उनको ऐसा बनाइए ताकि कई लोग दर्शन के लिए आ सकें। भक्ति के पथ में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा भक्ति बहुत तीव्र हो जाती है, और उनमें से एक है पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना भगवान के। और प्रभुपाद समझाते हैं कि पाद सेवनम का एक अर्थ ये भी होता है कि पैरों से चलकर मंदिर जाना या फिर भगवान की लीला स्थलियों में जाना। 64 अंग हैं भक्ति के, और उनमें से एक अंग है भगवान की लीला स्थलियों में जाना या धाम में जाना। ये अगर किसी को नहीं पता मोबाइल कैसे बंद करना है तो आसपास के लोगों से पूछ लीजिए, कृपया बार बार डिस्टर्ब ना कीजिए। स्वरूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए भक्ति के, उनमें से एक है कि लीला स्थलियों में जाना। भगवान जहां हैं, भगवान ने जहां लीला की, उन स्थलियों में जाना, जिसे यात्रा कहते हैं। तो जब महाप्रभु के आदेश पर गोस्वामियों ने उसको प्रकट किया, तब से लेकर आज तक हजारों हजारों लाखों भक्त उन स्थलियों का दर्शन कर चुके हैं, और ये होता है आचार्यों की कृपा से। श्रील प्रभुपाद स्वयं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी यात्रा ले जाते थे, श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने शिष्यों को लाए थे हर जगह, और वो दिखा रहे थे यहाँ कृष्ण ने ये किया, यहाँ कृष्ण ने वो किया इत्यादि। तो ये जो यात्रा आना है ये तो अनादि काल से चल रहा है। विदुर जी ने यात्रा की, हम सब जानते हैं जब युद्ध प्रारंभ होना था तो उसके पहले विदुर जी को निकाल दिया गया हस्तिनापुर से, और विदुर जी ने कोई अपमान नहीं माना। उन्होंने भगवान की योजना मानी कि मैं बहुत व्यस्त था, मंत्री था, राज्य देखना, समय नहीं था। सोचिए, मतलब विदुर जी कभी तीर्थ यात्रा गए ही नहीं, इतने व्यस्त थे वो। और उसी लिए भगवान को योजना करनी पड़ी कि दुर्योधन ने उनको धक्के मार कर बाहर निकाला। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग बड़े भाग्यवान हैं, आपको घरों से धक्के मार कर बाहर नहीं निकाला गया है, तब आप यात्रा में आए हैं, अब अपनी इच्छा से आए हैं, सही है ना? आप में से कोई है जिनको धक्के मार कर भेजा गया यहाँ पर? तो भगवान ये दिखला रहे हैं विदुर जी की लीला से कि उसका इंतजार ना करो कि धक्के मार कर निकाले तब तीर्थ यात्रा पे जाओ, पहले ही चले जाना चाहिए। भगवान खुद जाते थे तीर्थ यात्रा पे नहीं, घूमने स्थलियों में, कई स्थलियों में गए भगवान, जाते थे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, असुरों का वध करने के लिए, बहुत से कार्यों के लिए, लेकिन कई जगह जाते थे। तो ऐसे ये यात्राओं का इतिहास है, और श्रील प्रभुपाद ने विशेष करके इसको प्रारंभ किया। भक्तों को विदेशों से बुलाया करते थे, सारी जगह से बुलाते थे। मायापुर में श्रील प्रभुपाद का आदेश था कि मायापुर में सभी भक्तों को गौर पूर्णिमा के समय आना चाहिए, तो काफ़ी उनके शिष्य आज भी उसका पालन करते हैं। गौर पूर्णिमा के समय बहुत से भक्त वहाँ रहते हैं। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद की गोस्वामियों की कृपा से धाम प्रकट हुए हैं और उन धाम में हम आ सकते हैं जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने लीला की। गौर अमर जे सब स्थाने करी लो भ्रमण रंगे। गौर अमर हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जे सब स्थाने जिन सारे स्थानों में लीला भ्रमण किया, उन्होंने लीलाएं की अपनी। शेषब स्थाने हेरी बोआमी प्रणाई भक्त संगे। शेषब स्थाने उन्हीं सब स्थानों में हेरी बोआमी हम भी जाएंगे। कैसे? प्रणाई भक्त संगे। जो प्रेमी भक्त हैं, जो महाप्रभु से प्रेम करते हैं, भगवान से कृष्ण से प्रेम करते हैं, उनके संग में हम जाएंगे। तो इसलिए जो यात्रा हम लोग आए हैं, भगवान के धाम में प्रवेश किया है, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इच्छा की लेकिन आ नहीं पाए। एक स्वरूपानंद प्रभु बता रहे थे पैसे उनके पास बहुत हैं लेकिन आ नहीं पाए। लेकिन आप जानते कि जगन्नाथपुरी के महात्म्य में क्या कहा गया है? जैमिनी ऋषि बताते हैं कि अगर कोई इच्छा मात्र कर लेता है जगन्नाथपुरी जाने की, उसके सारे पाप नाश हो जाते हैं। इच्छा मात्र करने से प्रवेश करना, तो फिर सोचिए कि क्या बात, मतलब क्या कहना उसका। लेकिन इच्छा मात्र अगर किसी ने की, लेकिन ऐसे भी दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो इच्छा ही नहीं करते हैं, उनको जाने का भी अवसर मिलता है, धाम में प्रवेश का अवसर मिलता है, लेकिन मना कर देते, नहीं जाना ही नहीं है, इच्छा नहीं है। तो जो इच्छा मात्र कर ले उनके पाप कट जाते हैं, तो जो प्रवेश कर लेते हैं उनका क्या होता है? तो ये धाम है भगवान का जगन्नाथपुरी। चार स्थान है महत्वपूर्ण या चार धाम। उत्तर में बद्रिकाश्रम या बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका नगरी, पूर्व में जहां हम लोग अभी हैं जगन्नाथपुरी, और दक्षिण में रामेश्वरम। ये चार धाम माने गए। भगवान बद्रिकाश्रम में स्नान करते हैं, वस्त्र धारण करने के लिए द्वारका आते हैं, वहां श्रृंगार बहुत होता है भगवान का, और फिर पुरी में खाने के लिए आते हैं प्रसाद, और रामेश्वरम में सोने के लिए जाते हैं भगवान। तो ऐसे चार धाम हैं, जिनमें से जिस एक धाम में हम यहाँ हैं जगन्नाथपुरी। इस धाम में प्रवेश कैसे किया जाता है ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। पैरों से टिकट लेकर, प्लेन पकड़कर, ट्रेन पकड़कर कैसे धाम में प्रवेश किया जाता है? धाम में प्रवेश का मार्ग है श्रवण, सुनकर प्रवेश किया जाता है। श्रद्धा बढ़ती है, धाम का महत्व पता चलता है, और तब हम प्रवेश कर सकते हैं। अन्यथा तो आए और जाएं। आपने देखा कितनी भीड़ है, लोग आए हैं, ये यहाँ पर आकर कितना अच्छा हम लोग समझ सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में, बम्बई दिल्ली में लोग न्यू ईयर मनाते हैं ना, या क्रिसमस मनाते हैं, राइट? सड़कों पर घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं। जब हम लोग यहाँ आते हैं तब देखते हैं कि कितना अच्छा है कि लोग छुट्टी मनाने धाम में आ रहे हैं। भले उनको श्रवण नहीं है, भले उनको ज्ञान नहीं है ये धाम क्या है, लेकिन फिर भी वे आते हैं यहाँ। कम से कम भगवान के दर्शन, आज हम लोग दर्शन करने जाएंगे तो देखेंगे कितनी भीड़ है। हमारे इस्कॉन मंदिरों में बड़े आराम से दर्शन होते हैं, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए बड़े आराम से दर्शन है, लेकिन आज आप देखेंगे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए हजारों हजारों लोग। और प्रसाद तो यहाँ की विशेषता है, यहाँ का जो मंदिर का किचन है ये दुनिया का सबसे बड़ा किचन है, दुनिया का। इस किचन में जब उत्सव नहीं होता रोज 1,00,000 लोगों के लिए भोजन बनता है प्रसाद, और उत्सवों के समय 2,50,000 लोगों के लिए रोज। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा किचन है और क्या क्या बनता है। अवसर मिला जब हम लोग जाएंगे दर्शन करने, लेकिन हम लोग शायद देर से जाएंगे, फिर भी जा सकते हैं, थोड़ा सा किचन में भी देखाएंगे। हम अभी 1 महीने पहले आए थे तब हम किचन पूरा देख रहे थे, अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था है, एक जगह कटिंग हो रही है, दिखने में लगता है कि बहुत साफ सुथरा नहीं बनाते हमारा वो घर का किचन, बहुत क्लीन है जरा भी कुछ, यहाँ ये लोग ऐसे ही बाहर सब कर रहे हैं। लेकिन ये तो भौतिक दृष्टि है, क्योंकि प्रसाद ये शुद्ध करने वाला है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें अब जाकर वापस गंदगी में बनाना चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी बहुत विशेष स्थान है। श्रीपद रामानुजाचार्य उन्होंने यहाँ दोष ढूंढने का प्रयास किया था, इतने बड़े आचार्य हैं, और उन्होंने दोष ढूंढने का जब प्रयास किया, वो यहाँ आए, वो हर मंदिर में जा रहे थे और कैसे विग्रह की सेवा करनी चाहिए इसके स्टैंडर्ड्स को स्थापित कर रहे थे हर मंदिर में जाकर। यहां भी आए तो उन्होंने देखा जगन्नाथ जी की सेवा ठीक से नहीं, और ये भगवान है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये स्टार्च वाला कपड़ा पहना देते हैं, भगवान को पहनाना नहीं चाहिए। कल सुबह इन लोगों को बताऊंगा मैं कैसे पूजा करनी है, ये लोग को ठीक से पता नहीं। रात को सोए कि सुबह इनको बताएंगे, और भी बहुत कुछ था, उन्होंने देखा कि ये सिस्टम चेंज करना, ये चेंज करना, ये ठीक नहीं है। रात को सोए, सुबह उठे, अपना कमरा खोला तो बाहर देखा कि कुछ बदला बदला लग रहा है, तो उन्होंने आसपास देखा क्या हुआ, तो दिखे नहीं ठीक से, वही कमरे नहीं दिखे जिस कमरे में वो थे, आश्चर्य हो गया उन्होंने। तो देखा कहाँ है, यहां से 200-250 किलोमीटर दूर थे वो, रात को सोए थे यहां। जगन्नाथ जी ने रात भर में उनको हटा दिया, बोले यहां कुछ चेंज करने का प्रयास मत करो, यहां जो होता मेरी इच्छा से होता। जैसे हम लोग सुबह मंगल आरती टाइम पे होनी चाहिए, 1 मिनट लेट हो जाए तो पुजारी को डांट पड़नी शुरू हो जाती है, क्या हुआ क्या हुआ, समय पे बंद होना है, सब कुछ होना है। और यहां पर जगन्नाथ जी दर्शन देते ही रहते हैं। ये जो स्थान है, यहाँ एक ही शायद ऐसा स्थान है जहाँ जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है, भगवान सोते नहीं है यहाँ, निकाह ना खाने आते हैं यहाँ, तो सोने के लिए रामेश्वरम जाते हैं। सो यहाँ दर्शन शुरू हो जाता है, सुबह से शुरू रहता है, चलता रहता है चलता रहता है, और फिर रात को करीब 2 घंटे के लिए बंद होता है केवल, वो भी किस लिए, मनुष्यों के लिए, देवताओं के लिए खुला रहता है वो 2 घंटे। देवता आते, जरा देवताओं को अहंकार है ना, वो सबके साथ भीड़ में नहीं आ सकते हैं, तो भगवान ने कहा ठीक है अहंकार बनाए रखो, तुम्हारे लिए 2 घंटे का टाइम देता हूँ। 22 घंटे का टाइम उन्होंने बाकी पब्लिक के लिए दिया है, देवताओं को चलो तुम्हारे लिए भी कुछ तो तुम्हारा भी मूल्य होना चाहिए। तो 2 घंटे उनको दर्शन देते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं। हम एक बार गए थे, रात्रि का समय था, करीब 11-11:30 बजे थे, मंदिर खाली था, हमने सोचा कि बंद हो गए होंगे, तो हमने पूछा तो बोले नहीं खुले हैं दर्शन, चले जाइए। तो हम लोग गए अंदर, तो उस समय भगवान को स्नान कराया जा रहा था, रात्रि के समय 11:30। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और कैसे बकेट्स भर भर के पानी डाला जा रहा है, स्नान यात्रा हो रही है, और एक पंडा वो गया, उसने छोटा सा द्रोण नीचे लगाया, ऊपर से पानी जगन्नाथ जी से ऐसे गिरकर पूरा आ रहा है, उसने ऐसे लगाया लाकर हमें दे दिया। हमें तो सोच रही ये क्या हो रहा है, हमने पूछा क्या हो गया, ये समय क्यों स्नान करा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज भगवान की शेविंग हुई है। भगवान की शेविंग हुई है, तो पंडा हमें जोर से कहते आप शेविंग नहीं करते हो, हमने कहा हाँ करते तो है लेकिन जगन्नाथ जी। उन्होंने कहा उनकी शेविंग हुई है, तो शेविंग हुई है इसीलिए नाई आया था, तो नाई तो पुजारी नहीं है, तो नाई ने छू दिया, अब स्नान कराना उनको। तो हमने कहा अच्छा ऐसा भी होता है, तो हमने कहा कौन सी शेविंग क्रीम यूज करते हैं जगन्नाथ, हम भी ले आए वहां। सो उन्होंने बताया कि जो समुद्र में मोती मिलते हैं उस मोती का पेस्ट बनाया जाता है, और वो पेस्ट उनकी शेविंग क्रीम के लिए इस्तेमाल होता है। हमने कहा बड़ा महंगा है, अफोर्ड नहीं कर पाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि ये जगन्नाथ जी के अनुसार सब कुछ चलता है। यहां पर कोई ऐसे स्टैंडर्ड नियम कि यही होना है ये नहीं हो सकता, अन्य जितने भी मंदिरों में चलते होंगे यहां नहीं है, यहां इनके अनुसार है, जगन्नाथ जी के अनुसार। वो जब चाहे दर्शन देते हैं, जब चाहे नहीं देते हैं, पुजारी को कह देते बंद कर दो बस बहुत हो गया, थोड़ी देर बाद में देंगे। खा रहे हैं कभी, हम अभी पिछली बार आए थे गए तो भोग लगा भगवान को, तो हमने पूछा कितनी देर, क्योंकि हमारे तो पता 20 मिनट में प्लेट हटा देंगे, भगवान ने खाया या नहीं खाया, राइट। पूछते हैं क्या पुजारी अंदर जब जाते हैं भोग लगाते हैं तो क्या पूछते हैं कि भगवान खा लिया कि नहीं, हटाएं या नहीं हटाएं, कोई नहीं पूछता, टाइम हो गया हटा दो। तो यहां पर हम लोग खड़े हैं खड़े हैं खड़े, हमने कहा क्या हो गया, आधा घंटा हो गया। तो बोले अब जगन्नाथ जी की जो इच्छा है वो जब खा के उठेंगे तब तो दर्शन देंगे। हमने कहा ये बड़े विचित्र यहाँ के नियम है। तो ये जो जगन्नाथपुरी है ये सही में धाम है भगवान का। हजारों, हमने सुना करीब 20,000 पंडे भगवान की सेवा करते हैं, और उससे भी अधिक लोगों का घर केवल जगन्नाथ जी के कारण चल रहा है। से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें हमने प्रवेश किया है। चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है कि अगर कोई इस धाम में प्रवेश करता है और यहाँ आकर लेट जाता है बस, तो उसको दंडवत करने का लाभ मिलता है। आप में से कितने लोग दंडवत करने वाले हैं केवल, और जो चलता है उसको राजसूय यज्ञ करने का लाभ मिलता है एक एक पद पर, और आज हम लोग चलने वाले हैं काफी। और एक बात कही गई है, हम बता देते हैं आपको लेकिन आप स्वीकारना मतलब पालन नहीं करना उसका। कहा गया कि अगर कोई मछली भी खाता है यहां पर तो उसको हाविश, हाविश मतलब जो यज्ञ में अर्पित चीजें होती हैं, तो उसका खाने का लाभ मिलता है। तो ये जगन्नाथपुरी है जिसमें हम लोगों ने प्रवेश किया है। ये जगन्नाथपुरी कई नामों से जानी जाती है। पहला नाम है इसका पुरी, पुरी मतलब जहाँ लोग रहते हैं, या कहना चाहिए जहाँ पुरुष रहते हैं, पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, तो वे पुरी कहलाता है। दूसरा नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम क्यों, पुराणों में वर्णन है कि भगवान ने इस स्थान को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। भगवद गीता का कौन सा अध्याय है पुरुषोत्तम, 15वां, तो भगवान ने ये नाम ही दे दिया। इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो शंख के आकार में है। उड़ीसा ये जो पूरा राज्य है ये चार भागों में बटा है, शंख चक्र गदा पद्म, तो ऐसी चार भागों में बटा है। ये जो पुरी है ये शंख के रूप में है। भुवनेश्वर चक्र, जब हम भुवनेश्वर जाते हैं, आप में से कितने लोग भुवनेश्वर से आए हैं, कुछ लोग कल आए ना भुवनेश्वर से, हाँ जी। सो भुवनेश्वर चक्र क्षेत्र है, और हम लोग जाएंगे कोणार्क, वो पद्म क्षेत्र है। तो शंख क्षेत्र ये है, चक्र क्षेत्र भुवनेश्वर, पद्म क्षेत्र कोणार्क, और जाजपुर एक स्थान है तो वो गदा क्षेत्र है। तो शंख चक्र गदा पद्म ये चार क्षेत्र, तो ये शंख क्षेत्र भी कहलाता है क्योंकि शंख के आकार में है। इस क्षेत्र को दशावतार क्षेत्र भी कहते हैं, जगन्नाथपुरी को। दशावतार क्षेत्र मतलब ऐसे बताते हैं कि जितने अवतार हुए भगवान के, प्रमुखतः दशावतार जो हुए, वे पहले पुरी में प्रकट हुए और फिर यहां से गए लीला करने के लिए जहां भी प्रकट होना था, और वापस लीला करके यहीं पर आए, ऐसा पुराणों में वर्णन है। इसीलिए इसे दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है। और एक नाम है इसका भौम वैकुंठ। भौम वैकुंठ मतलब एक दिव्य वैकुंठ है भगवान का धाम। और ये भौम मतलब पृथ्वी पर, जैसे भौम स्वर्ग, भौम वृंदावन, ऐसे भौम वैकुंठ है। तो पुराणों में कहा गया है कि मथुरा में केशव जी वास करते हैं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ वास करते हैं, ये उनका विशेष स्थान है। इसे नीलाचल क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि नीले रंग का पर्वत ऐसा माना जाता है ये, तो नीलाचल श्री क्षेत्र कहलाता है। श्री क्षेत्र मतलब श्री यानी लक्ष्मी जी, तो ये लक्ष्मी जी का क्षेत्र है। लक्ष्मी जी यहाँ कुकिंग करती हैं, जो सारा कुकिंग होता है लक्ष्मी जी की अधीनता में होता है, तो ये क्षेत्र श्री क्षेत्र भी कहलाता है। ये ऐसा क्षेत्र है जो सेवा, औदार्य और माधुर्य का मिला जुला स्थान है। सेवा, औदार्य और माधुर्य, क्यों इतनी सेवा होती है आप देखेंगे, कैसे सेवा कर रहे हैं अंदर। जब मंदिर में, अगर आप किचन में चले जाएं या अन्य जगहों पर, भगवान की सेवा देखनी चाहिए, सेवा का भाव। और औदार्य धाम इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी बड़े उदार हृदय के हैं, किसी को भी दर्शन, लोग नहीं आते तो खुद बाहर चले आते हैं भगवान रथ यात्रा के समय। और माधुर्य भी है, जैसे जब चैतन्य महाप्रभु आए तो वो जब दर्शन किया करते थे तो वो जगन्नाथ नहीं देखते थे, श्याम सुंदर देखते थे, त्रिभंग स्वरूप श्री कृष्ण का। तो माधुर्य धाम भी है। तो ऐसे ये कई और इसके नाम हैं, भूस्वर्ग कहलाता है, नरसिंह क्षेत्र कहलाता है। ये नरसिंह देव के बहुत सारे मंदिर हैं। ये नरसिंह क्षेत्र इसलिए कहलाता है कि जब पहली बार जगन्नाथ जी की स्थापना हो रही थी, आप सबको एक कथा पता है कि मंदिर तैयार हो गया, इंद्रद्युम्न राजा, उनकी इच्छा थी कि ब्रह्मा जी आकर विग्रह की स्थापना करें, तो वे ब्रह्मा जी के पास चले गए बुलाने के लिए। और जब तक आए तो बहुत समय बीत गया था, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर जगन्नाथ जी की स्थापना की। अभी इस कथा को थोड़े समय में कहेंगे। तो ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया यहाँ पर स्थापना के लिए, तो उस यज्ञ से नरसिंह देव प्रकट हुए थे और बहुत विशेष विग्रह, वे अनंत शेष पर थे, जिनके सात सिर थे उस समय फण, और उस पर वो विराजमान थे नरसिंह देव, वो प्रकट हुए थे। इसलिए क्षेत्र नरसिंह क्षेत्र भी कहलाता है। सो यहाँ का जो इतिहास है बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रारंभ होता है ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, भगवान ने कहा कि रचना करो, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करना शुरू कर दी। और सबसे पहले उन्होंने सृष्टि क्या की, उन्होंने सृष्टि की लोगों को मोह में डालने के लिए। आज हम लोग जो मोह में है ना, भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, मरने से डरते हैं, पैसे के पीछे हैं, प्रतिष्ठा के पीछे हैं, भगवान के पीछे नहीं है, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाया। इसीलिए आगे से अगर कोई आपसे कहे कि आप भगवान के पीछे क्यों नहीं भाग रहे, बोलने ब्रह्मा जी की गलती है, हमारी गलती नहीं है, ब्रह्मा जी ने बनाए। मोह, महामोह, तमा, तो क्यों बनाए, ताकि जीव मोह में पड़ा रहे कि मैं यहीं सुखी रह सकता हूं। देखिए हम सबका ये भाव है, भगवान बुला रहे हैं बारंबार, लेकिन हमारे लिए ये कि कौन जाएगा ना। आप में से कितनी बार पहली, कितने लोग पहली बार जगन्नाथपुरी आए हैं बताइए, पहली बार, ये किसकी यात्रा ले आए हो सारे पहली बार आए हैं, आश्चर्य की बात है। अच्छा कितने लोग पहले आ चुके हैं, हाथ उठाई अंदर कुछ, ये डबल के सब लोग, अच्छा थोड़े लोग आ चुके हैं। ओके सो देखिए पहली बार कितने सालों में, 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल उम्र निकल गई, लेकिन अब अभी तक कभी गए ही नहीं जगन्नाथपुरी। क्यों? हमारे कृष्ण बगल में ही हैं, दिल्ली में, तो हम क्यों जाएं कहीं पर। और वैसे हमें कभी कभी लगता है कि ब्रज के लोग या उधर के लोग ज़्यादा इधर क्यों नहीं आते हैं, इसका एक कारण हमें लग रहा है बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप लोग कहें, ये लिखा नहीं है कहीं, ये अतुल कृष्णदास की कमेंट्री है, सो अगर आप लोग कहें तो उसको बताएं कि क्यों ब्रज के लोगों को ये इतना पसंद नहीं आता जगन्नाथपुरी। सुनना चाहते हैं? ये कथा हम बाद में कहने वाले थे, अभी कह देते हैं। पुरुषोत्तम देव जो राजा प्रताप रुद्र के पिता थे, राजा थे यहाँ के क्षेत्र के, तो वो उन्होंने एक बार चढ़ाई की, दक्षिण में गए थे कांची पे, कांचीपुरम, तो वहां से 3 विग्रह लेकर आए थे वो। एक गणेश जी का था, एक साक्षी गोपाल थे, और एक राधा कांत, श्री श्री राधा राधा कांत, 3 विग्रह लाए थे वो वहां से। उस समय राधा रानी नहीं थी, लेकिन राधा कांत थे, और उन्होंने स्थापना की थी यहां पर। तो ऐसे कहते हैं कि उस समय जो राधा कांत जी थे अर्थात श्री कृष्ण, वे जगन्नाथ मंदिर में थे, जहाँ भी मंदिर है। अब नहीं है वो, अब वो हम लोग आज जहाँ जाएंगे गंभीरा, उस स्थान में है वो, वहाँ पर उनके दर्शन करेंगे राधाकांत जी के। ये कांचीपुरम में थे, पुरुषोत्तम देव मतलब आज से करीब 700 साल पूर्व समझ लीजिए, उनको लेकर आए थे यहाँ पर। तो जब वो जगन्नाथपुरी में थे तो स्वाभाविक है उनकी भी सेवा होती थी, राधाकांत जी की भी। तो जगन्नाथ जी ने कुछ ध्यान दिया, कुछ नोटिस किया, उन्होंने देखा कि राधाकांत जी के आने से पहले जब उनके सामने प्लेट आती थी भोग की खाने के लिए, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आइटम्स हुआ करते थे, और अब जब प्लेट आती है तो अच्छे वाले आइटम गायब रहते हैं उसमें से, और बाकी चीजें रहती हैं। तो जगन्नाथ जी ने सोचा ये क्या हो गया, पहले तो अच्छी प्लेट आया करती, पुजारी क्यों गड़बड़ कर रहा है। फिर जगन्नाथ जी ने ध्यान किया तो पता चला कि राधा कांत जी सारी अच्छी चीजें उसमें से निकाल लेते हैं। तो जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि इनको मंदिर से बाहर करो, ये सारा मेरा वो खा जाते हैं अच्छा वाला, आप लेकर आए हैं इनको और आपने यहां स्थापित कर दिया, मुझे नहीं मिल रहा है खाने के लिए ठीक से। अब राजा सुबह सुबह, आप सोचिए स्वप्न में आकर आदेश मिला, अब कैसे हटाएं, डीटी हटाने हैं, राजा परेशान हो गए। राजा ने अपने पुरोहित को बुलाया, राज पुरोहित को, कि भाई भगवान ने ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने कहा भगवान ने कहा तो करना पड़ेगा, फिर कहाँ जाएंगे ये, क्या करें। तो राजा ने कहा आप अपने ही घर ले जाइए। तो काशी मिश्र जो राजा के राज पुरोहित थे, तो अपने घर ले आए, जो गंभीरा है वो उनका घर है, तो वहां पर उन्होंने स्थापित किया। तो हमें लगता है कि क्योंकि राधा कांत जी को जगन्नाथ जी ने थोड़ा सा, इसीलिए ब्रज वाले लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ नहीं जाना कि हमारे कृष्ण को जगन्नाथ जी ने है, दोनों वही है, तो शायद इसीलिए या तो ब्रज के लोगों को आने नहीं देते भगवान यहाँ पर, या आते हैं तो ज्यादा कष्ट देते हैं। खैर तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो नरसिंह देव का वर्णन कर रहे थे। तो जगन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा जी को खुद भी दुख हुआ। देखिए ब्रह्मा जी कोई बुरे व्यक्ति नहीं है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, भक्त हैं, तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने क्या किया, इन लोगों को मोह में डाल दिया, अब ये लोग ऐसे ही पड़े रहेंगे, कब भक्ति करेंगे, कब जाएंगे भगवान के पास। तो वे भगवान के पास गए, उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सृष्टि करना। अब भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया। उन्होंने कहा देखिए मैंने क्या कर दिया, लोगों को मोह में डाल दिया है, कहाँ से उद्धार होगा, तो उस समय ये वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है, ये महात्म्य दिया गया है। तो उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा चिंता मत करो, एक स्थान है। तो उन्होंने इस स्थान का वर्णन किया वहां पर भगवान ने, जगन्नाथपुरी। उन्होंने कहा कि वहां रहने वाले हर जो भी जितने भी वहां के वासी हैं वो सब चतुर्भुज रूप है उनका, वो सब मुक्त है। और वहां जो प्रवेश कर जाएगा उस स्थान में, उसके सारे पाप निश्चित कटेंगे। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। इसीलिए चिंता नहीं करो, लोग करेंगे पाप लेकिन फिर धाम में भी आएंगे, है ना। धाम में पापी ही आते हैं ना, कि अच्छे लोग भी आते हैं? क्या हो गया, कुछ अच्छे लोग आते हैं धाम में कि पापी आते हैं? तो कंफ्यूज हो रहे लगता है आप लोग। दोनों आते हैं, राइट, दोनों आते हैं। कह रहे हम भी तो आए हैं, फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं खाली पापी लोग आते हैं। इनका कहना ये है हम भी तो आए हैं। सो उन्होंने कहा पाप निश्चित करेंगे लेकिन यहां पर आकर उनके पाप कट जाएंगे। और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा जरा घूम कर आओ। तो ब्रह्मा जी आए यहां पर जगन्नाथपुरी में, बहुत सुंदर स्थान था। उस समय की बात है, ये तो प्रारंभ की, जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं तब तो इतनी गाड़ियां नहीं थी वहां पर। सो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया और स्थान का दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो उन्होंने देखा कि एक स्थान था रोहिणी कुंड, हम लोग उसके दर्शन करेंगे। तो रोहिणी कुंड था, तो ऊपर एक वृक्ष था वहां पर, वट वृक्ष या कल्पवट कहते हैं उसको। उस वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था और वो गिर गया रोहिणी कुंड में, और जैसे ही गिरा चार हाथ हो गए, चतुर्भुज रूप लेकर मुक्त हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौवा अरे और कोई होता, कोई योगी, कोई तपस्वी, कोई भक्त हो तो ठीक था, उसके चार हाथ, कौवा गया और सीधा धाम में रोहिणी कुंड में। तो ये हुआ। और तभी उन्होंने देखा कि यमराज आ गए। यमराज ने आकर, यमराज आए तो दर्शन किए उन्होंने नील माधव के। उस समय जगन्नाथ जी इस रूप में नहीं थे यहां पर, इसका वर्णन करेंगे कि जगन्नाथ जी कैसे आए इस रूप में। तो उन्होंने नील माधव के दर्शन किए, साथ में लक्ष्मी जी थी। तो उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, क्योंकि लक्ष्मी क्षेत्र है, श्री क्षेत्र हमने बताया आपको, तो उन्होंने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की यमराज ने। यमराज ने कहा कि हम जानते हैं कि आप लोग बहुत कृपा करते हैं, लेकिन आप मेरी दुकान क्यों बंद करवा रहे हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा क्यों? उन्होंने कहा कौवा मुक्त हो गया। तो यमराज को भी यही था कि अरे कैसे हो सकता है ये, इतना कौवा का, कौवे की जो श्रेणी मानी जाती है, पक्षियों में भी बड़ा नीच माना जाता है वो श्रेणी। पक्षियों में भी श्रेणियां हैं, जैसे मनुष्यों में होती है ना, शूद्र वैश्य ब्राह्मण, ऐसे पक्षियों में भी हैं। शूद्र वैश्य ब्राह्मण नहीं है, लेकिन श्रेणियां हैं अच्छे स्तर के पक्षी, तो उनमें कौवा सबसे नीचे माना जाता है। तो कौवा, तो यमराज ने कहा कि ये मेरी दुकान बंद करा रहे हो, क्या बात है। सो लक्ष्मी जी ने उन्हें कहा कि यमराज जी, केवल आपका ही नहीं, ब्रह्मा तक किसी देवता का इस स्थान पर अधिकार नहीं है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है भगवान का जगन्नाथपुरी, यहां कोई देवता का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? बाकी जगहों पर है, यमराज जी ले जा सकते हैं, इंद्र कुछ कर सकते हैं, वन चंद्र वरुण इत्यादि, यहां कुछ नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप बाहर रहिए, आप चिंता मत कीजिए यहां क्या हो रहा है। तो उस समय यमराज बहुत प्रसन्न हुए, भक्त हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, और भी कोई ऐसे स्थान हो तो बता दीजिए, ताकि मैं वहां जाऊं ही नहीं। तो उस समय लक्ष्मी देवी ने ये पूरी जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा यमराज को सुनाई, कैसे जगन्नाथ जी प्रकट हुए। और ये सुंदर कथा स्कंद पुराण में आती है, थोड़ा सा भिन्न है उस कथा से जो कथा हम लोग जानते हैं जगन्नाथ जी की प्राकट्य की, थोड़ी सी भिन्न स्कंद पुराण में दी गई है। सो उसको कहेंगे, समय क्या हुआ है। बड़ा जल्दी समय चला जाता है यहाँ पर। सो कितने बजे तक है क्लास, सोच लो। वैसे गंभीरा और सिद्ध बकुल की कथा हम लोग जब वहां जाएंगे तब करेंगे, अगर वहां समय मिला, क्योंकि वहां बैठकर करने से ज्यादा लाभ है। वैसे दो स्थान हैं, सिद्ध बकुल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, या यहीं पे कर सकते हैं, फिर वहां पर कथा नहीं होगी, केवल दर्शन कर लेंगे, क्योंकि वहां हमें लगता नहीं इतनी भीड़ में आज संभव हो पाएगा वहां कहीं और कथा। सो ठीक है, यहीं कथा कर लें। आप लोगों को नींद यहीं अच्छी आ रही है? बताए सब थके हुए ट्रेन से, ट्रेन में नींद नहीं हुई, भीड़ भाड़ बहुत थी, और अब इतनी कथाएं वैसे आनंददायक होती हैं लेकिन नींददायक भी होती हैं। तो ऐसी नींददायक कथा चल रही है तो और क्या चाहिए, कहीं जाने की इच्छा नहीं है। आप में से किसी को भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही, नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है। श्री जगन्नाथ जी के प्राकट्य की, और अगर समय हुआ तो गंभीर और सिद्ध बकुल भी यहीं कहेंगे, उसके बाद फिर स्नान के लिए भी जाना है। समुद्र स्नान बहुत जरूरी है, ये भी लक्ष्मी देवी ने कहा है यमराज को, समुद्र स्नान का महात्म्य है, क्या महत्व है यहाँ के। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने दोहराया उसको, तो ये बहुत जरूरी है समुद्र स्नान यहाँ पर। आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? अच्छे से एकदम बढ़िया स्विमिंग, ठीक है, लेकिन करिएगा नहीं यहाँ पर, ये समुद्र बड़ा खतरनाक है। प्रयास मत कीजिएगा कि हमें स्विमिंग आती है, हम अंदर चले जाएंगे। जो भी यात्रा कमेटी के भक्त निर्देश दें उसके अनुसार स्नान कीजिएगा कृपया, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जितने आए हैं उतने ही वापस जाएं। वापस मतलब वापस दिल्ली की बात कर रहे हैं या जहां से भी हम लोग आए हैं। वैसे कई स्थानों से भक्त आए हमने सुना है, यहाँ पर दिल्ली से तो आए हैं, ग्रेटर नोएडा से, और कहाँ से, होशियारपुर हमने सुना काफी भक्त आए वहां से, करीब 30-35 भक्त आए हैं। भीलवाड़ा से आए, थैंक यू, और जयपुर, जम्मू, जम्मू से, ओके, हाँ जी, प्रयागराज, मेरठ, वाराणसी, और सारा भारत यहाँ पर है। एटलीस्ट उत्तर भारत के लोग, तो दक्षिण से कोई नहीं है ना? हाँ, इंग्लैंड से है। ओ यस, हरे कृष्णा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। और कहीं से कोई है जो मिस कर गए, अभी नाम नहीं लिया? ब्रज से है, यस, वृंदावन से है। उत्तराखंड कहाँ से है? उत्तराखंड में कहाँ पे? काशीपुर। ओ, और कोई रह गए जो नाम नहीं है? एमपी, इंदौर से, अरे वेरी गुड, क्या है, बड़वानी, ओके, माता जी, हाँ, हिमाचल, हिमाचल से, ओके, कानपुर से कौन है? और कोई? हरिद्वार, अच्छा, ठीक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो आप लोग अलग अलग जगह से आए हैं, और इस यात्रा में प्रयास कीजिए एक दूसरे के साथ मिलने का, ऐसा ना रहे कि वापस जाते जाते भी हम लोग हरिद्वार, होशियारपुर या वहीं के बने रहें, हम लोग वापस जाते जाते सब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के भक्त हो जाने चाहिए, मतलब मिलिए एक दूसरे से, लेकिन कार्यक्रमों के अलावा, कार्यक्रम जो बताए जाएँ ये भी हमारी आपसे एक विनती है, कि जो भी कार्यक्रम बताए जाएं, जिस अनुसार बताए जाएं, उसका पालन कीजिए। अभी हम लोग यहाँ से लेकर मायापुर तक कई लोग साथ में रहने वाले हैं, तो ध्यान कीजिए कि जो भी आपको कहा जाता है उसका पालन जरूर कीजिएगा, नहीं तो यात्रा कमेटी जो हैंडल कर रही है उनको बहुत तकलीफ़ हो जाती है, लोग पालन नहीं करते हैं। कहा जाता है इतने बजे आइए, कोई आते नहीं है, वो अपना शॉपिंग करते रहते हैं, तो बसें खड़ी रहती हैं, चलती नहीं हैं, से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो जगन्नाथ जी की कथा जो लक्ष्मी देवी ने बताई यमराज को, ब्रह्मा जी भी सुन रहे हैं, उसको सुनने के बाद ब्रह्मा जी आए थे, फिर और स्थानों में गए थे, तो ये महत्वपूर्ण कथा है। जगन्नाथ जी के प्राकट्य की बताने लगी कि राजा इंद्रद्युम्न की जो कथा है उसका दरबार लगा हुआ है और उस दरबार में बहुत से लोग बैठे हैं, उनमें से एक साधु खड़े होते हैं और उनसे पूछा जाता है, कोई ऐसा स्थान देखा है आपने, बहुत महत्वपूर्ण स्थान? उस साधु कहते हैं, मैं भगवान के एक रूप का दर्शन करके आया हूं जो मैंने कहीं नहीं देखा, वो थे नील माधव। नील माधव, यहां पर एक स्थान भी है यहां से थोड़ी दूर, नील माधव। सो उन्होंने कहा कि मैंने वो दर्शन किए हैं, बहुत सुंदर है, वो सुंदरता कहीं नहीं। तो राजा बड़े आतुर हो गए कि हम भी देखना चाहते, दर्शन करना चाहते, भक्त थे राजा। तो उस समय उनके मंत्री को उन्होंने भेजा, विद्यापति को, कि जाओ ढूंढ कर आओ। एक कथा कही जाती है कि विद्यापति आए, उन्होंने विवाह किया, रुके और शबरों के जो प्रमुख थे उनकी लड़की से इत्यादि, लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन नहीं है कि उन्होंने वो आए और विवाह किया इत्यादि। तो उन्होंने बताया, वहाँ बताने लगी लक्ष्मी देवी की, वो जो विद्यापति थे वो गए दर्शन करने, तो उस समय भगवान की जो पूजा नीलमाधव की शबरों के द्वारा की जाती थी। शबर मतलब बहुत ऊंचे श्रेणी नहीं, तो उनके द्वारा ये पूजा की जाती थी। और जगन्नाथ जी उन, या नील माधव उस समय उनके द्वारा पूजित थे। देखिए जगन्नाथ जी का एक वैशिष्ट ये है कि हर कोई इनको पूजना चाहता, कोई भी हो। हम एक समय आए थे तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, एक ही रंग के कपड़े पहने हुए लोग आ रहे थे, नीले रंग के कपड़े बहुत सारे, और कुछ उठाए हुए, कुछ खिलौने विलौने लगे हुए थे उनके, उस पर हर एक कोई वो उठा के, हमें समझ नहीं आई क्या हो रहा है। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये शिवजी के भक्त हैं, और साल में एक बार कोई यात्रा होती है उनकी, जैसे उत्तर भारत में भी होती है कांवड़ यात्रा, क्या कहते हैं, हाँ, तो ऐसे यहाँ भी होता है वो, और ये वो लोग उठाकर लेकर आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं, जगन्नाथ जी के तो शिव जी के भक्त। तो कहने लगे कि वो इनको शिव जी मानते हैं, तो इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो हजारों हजारों की संख्या में उस समय यहाँ पर आकर वो दर्शन करते हैं। गणेश जी के भक्त इनको गणेश मानते हैं। तो जगन्नाथ जी सही दृष्टि में जगत के नाथ है, हर कोई इनके प्रति आकृष्ट है। और वैसे देखें तो रूप कोई बहुत सुंदर नहीं है, त्रिभंग रूप नहीं है दिखने में हमारी भौतिक दृष्टि से, लेकिन अगर प्रेम से देखा जाए तो वही श्याम सुंदर स्वरूप है। और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ रुके। महाप्रभु ने इस पृथ्वी पर 48 वर्षों तक लीला की, 24 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम में रहे और अगले 24 वर्ष संन्यास आश्रम, उनमें से 6 वर्ष भ्रमण किया और 18 वर्ष यहाँ जगन्नाथपुरी में रहे। सो हम लोग अब जिस स्थान पे चलेंगे अभी, अर्थात हम लोग जगन्नाथपुरी की गलियों में जब जाएंगे, तो ये वो गलियां हैं जहाँ चैतन्य महाप्रभु स्वयं इन गलियों में घुमा करते थे, इन गलियों में आया करते थे। जैसे हम लोग भी यहाँ से सिद्ध बकुल जाएंगे स्नान के बाद, प्रसाद के बाद, तो सिद्ध बकुल वो स्थान है जहाँ चैतन्य महाप्रभु रोज आया करते थे। और कौन रहते थे वहाँ? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने नामाचारी की उपाधि दी। देखिए क्या आवश्यकता थी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका जन्म अच्छे कुल में नहीं हुआ, उसको इतनी बड़ी उपाधि, इतना मान सम्मान कि महाप्रभु खुद मिलने आते थे। पहले हरिदास ठाकुर रहते नहीं थे यहाँ, एक समय बहुत सारे भक्त मिलने आए बंगाल से चैतन्य महाप्रभु को। देखिए प्रेम था, भक्ति प्रेम की बात है, नियमों की नहीं, रीति रिवाजों की नहीं। भक्ति को हमने केवल नियम रीति रिवाज बना दिया तो फिर भक्ति का अर्थ चला गया, क्योंकि भक्ति का अर्थ है प्रेम। तो रीति रिवाजों को त्यागना का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी रीति रिवाज ना करें, जप नहीं करें, ये नहीं। भक्ति से संबंधित प्रेम को उत्पन्न करने वाले सारे रीति रिवाजों को स्वीकार करने तैयार हैं अगर उससे कृष्ण प्रेम हो रहा है। तो महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को इसलिए चुना ऐसे कुल से ऐसे समाज से कि ये बताने के लिए कि कोई भी भक्ति कर सकता है और भक्ति की ऊंची अवस्थाओं तक पहुंच सकता है। तो जब बहुत सारे भक्त आया करते थे उनका भाव क्या होता था, प्रेम का भाव। उस समय पैदल आना होता था, आप तो ट्रेन में आए हैं, भीड़ भाड़ में आए हैं, तो आपको लग रहा था ये कहां इतना ट्रेन आज 3 घंटे लेट हो गई, कुछ हमने सुना दूसरी ट्रेन तो और ज्यादा लेट है, अभी तक पहुंचे ही नहीं है भक्त, या पहुंच गए नहीं पहुंचे, तो हमें लगता बहुत कष्ट है। लोग चलकर आते थे उस समय बंगाल से जगन्नाथपुरी किस लिए, महाप्रभु के दर्शन के लिए। बस 1.5 से 2 महीना लगता था उनको आने के लिए और 1.5 से 2 महीना जाने के लिए, और 2 महीना यहां रुकते थे। साल का 6 महीना केवल महाप्रभु को समर्पित और बाकी के 6 महीना तैयारी करते थे यात्रा की। जीवन थे उनके महाप्रभु कृष्ण। तो जब एक आए भक्त आए, महाप्रभु ने देखा बहुत प्रसन्न हुए, स्वयं जाकर हरेक के चंदन लगाया करते थे, स्वागत किया करते थे। फिर उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर नहीं है, तो उन्होंने पूछा हरिदास ठाकुर कहाँ है, इतने भक्तों में कहाँ गए हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने कहा कि हरिदास ठाकुर आए नहीं, प्रवेश नहीं किया उन्होंने, वो थोड़ा सा दूर ही रुक गए हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत नीच मानते हैं, निम्न मानते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते कि वो यहाँ जगन्नाथपुरी जैसे स्थान में प्रवेश करें, यहाँ रहें, इसलिए वो दूर ही रहे। भक्तों का ये भाव होना चाहिए। देखिए भक्ति क्या है, अपने आप को निम्न मानने का अर्थ ये नहीं है कि हम लोग नीचे पड़े रहें, गंदगी में रहें और गंदे कपड़े पहने रहे, मैं तो बहुत निम्न हूँ, नहीं, या गरीबी में रहें। निम्न रहने का अर्थ है कि अपने अहंकार को त्याग दें। हरिदास ठाकुर उस समय भी इतने बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी सब जगह, राजन काजी ने मारने का प्रयास कर लिया, नहीं मरे, सब कुछ सब जानते थे, लेकिन वो अपने आप को कभी इतना श्रेष्ठ नहीं मानते थे, तो आए नहीं। तो महाप्रभु ने उनके रहने की व्यवस्था की। ये जो स्थान था, ये एक बगीचा था उस समय, और छोटा सा वहाँ घर था। तो महाप्रभु ने स्वयं जाकर उसको मांगा कि मुझे स्थान चाहिए, मिल सकता है क्या। काशी मिश्र ने कहा जो आप कहें, जो आपकी आज्ञा, और फिर वहाँ हरिदास ठाकुर को रखा, क्योंकि वहाँ से जगन्नाथ जी के मंदिर का चक्र दिखाई देता था। आज नहीं दिखता है, इतनी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन उस समय चक्र दिखाई देता था, तो इसलिए वहां उन्होंने बिठाया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर वहां रहा करते थे, अपना जप किया करते थे। एक समय चैतन्य महाप्रभु मंदिर गए, आज भी भगवान को दांतुन अर्पण किया जाता है, दंत काष्ठ जिसे कहते हैं, दांतुन। कभी किया आप लोगों ने दांतुन? दांतुन तो वहां दांतुन अर्पण करते थे अलग वृक्ष का। एक समय पुजारी एक दिन अर्पण करने जा रहा था, तो उसने देखा 3 की जगह 2 ही दातुन है। अगर आपको भाग्य हुआ आपका, तो हम कहेंगे, देखेंगे, अगर पुजारी से मिला तो एक दातुन लेकर आएंगे, कल परसों का जो अर्पण आज का है, कल का भगवान को जो अर्पण किया होता है वो दे देते हैं कोई कोई पुजारी, तो इतना बड़ा वो दातुन होता है। तो पेड़ का बनता है, तो उस एक दिन देखा पुजारी ने कि दो ही हैं, तीन नहीं है, अर्पण करने जाना है। तो जल्दी से गया और एक बकुल का वृक्ष था तो उसका उसने दातुन बना लिया और लेकर आ गया, अर्पण किया। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु को वही बकुल का जो दातुन है वो दिया गया महाप्रसाद के रूप में। सो बहुत प्रसन्न हुए, लेकर आए। और नियम ये था कि चैतन्य महाप्रभु भगवान के दर्शन के लिए जाते थे और फिर वहां से सीधे हरिदास ठाकुर से मिलने। महाप्रभु के भक्तों में तीन प्रमुख भक्त कभी भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में नहीं गए, हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। क्योंकि वो लोग मानते थे हमारे इस मंदिर में केवल हिंदुओं को प्रवेश है, जगन्नाथपुरी में। इसलिए बहुत पूछा जाता है। एक बार हमारे साथ कुछ ऐसे भक्त थे जो विदेशी दिख रहे थे, नहीं लेकिन दिख रहे थे, तो हम लोग को सबको रोक दिया, कोई नहीं जाएगा अंदर। तो फिर वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, क्या नाम है, गोत्र क्या है, पिताजी का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, कि उनको पता हिंदू होगा तो सब पता होगा उसको, यहाँ भारतीय विदेशी होगा उसको क्या पता गोत्र क्या होता है और दादाजी का नाम होगा। तो वे लोग कभी नहीं गए। तो महाप्रभु रोज मिलने आया करते थे, नियम, दर्शन किए, प्रसाद लिया हरिदास ठाकुर के पास। तो महाप्रभु आए और उन्होंने वो जो उनके हाथ में था भगवान का दातुन किया हुआ दंत कष्ट या काष्ठ कहते लकड़ी, तो वो उन्होंने ऐसे ही जमीन में गाड़ दिया। और कुछ ही समय में, कुछ समय बाद वहां से वो वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। तो वो बकुल का वृक्ष है वहां, इसलिए बकुल, सिद्ध बकुल। और सिद्ध क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्यों सिद्ध बकुल कहते हैं उसको। एक तो कारण चैतन्य महाप्रभु ने लगाया खुद अपने हाथों से और केवल बस उसको गाड़ दिया, वो वृक्ष निकल आया। दूसरा कारण, तो जब वृक्ष हो गया, हरिदास ठाकुर उस वृक्ष के नीचे कथा भी नहीं, अपना जप करते थे, बस मिलना विलना सब वहीं पर करते थे। ये सिद्ध बकुल बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हम लोगों के लिए, विशेष करके उनके लिए जो जप में रुचि लाना चाहते हैं। और ऐसा कौन है जो जप में रुचि नहीं लाना चाहता, ऐसा कौन है जो वैष्णवों की कृपा नहीं चाहता। ये वो स्थान है, हरिदास ठाकुर ने दिखलाया, अपने जीवन के अंत तक वहां रहे वो। तो हरिदास ठाकुर उस वृक्ष के नीचे बैठकर जप करते थे। आप सोचिए क्या वो वृक्ष होगा रोज जो हरिदास ठाकुर से हरिनाम सुन रहा है, और वो भी कितने, 192 राउंड्स, 16 माला नहीं करते थे हरिदास ठाकुर, 192 माला रोज। और वो इस वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस वृक्ष के नीचे किया करते थे, इसीलिए वो सिद्ध। तो पहला कारण सिद्ध बकुल होने का, महाप्रभु के हाथ से लगा, दूसरा हरिदास ठाकुर के नाम को सुना, तीसरा कारण महत्वपूर्ण, हरिदास ठाकुर कुछ समय बाद इस धराधाम को छोड़कर चले गए। ये भी लीला वहीं पर हुई थी, उसी बकुल वृक्ष के नीचे वहीं पर। हरिदास ठाकुर एक दिन जब महाप्रभु का सेवक आए महाप्रभु के पास, हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास ठाकुर लेटे हुए थे। अरे क्या हो गया, बीमार है, कभी देखा ही नहीं था हरिदास ठाकुर को लेटे हुए ऐसे, तो बीमार है, उन्होंने जाकर महाप्रभु को बताया। महाप्रभु आए, हरिदास क्या हुआ, तो क्या ठीक नहीं है। हरिदास ने कहा शरीर तो वैसा ही है लेकिन मन ठीक नहीं है, मेरे जप पूरा नहीं हो पा रहा है। कितना, 192 माला। तो महाप्रभु ने कहा क्या आवश्यकता है, सिद्ध हो चुके हो, अब तो पूरा हो गया, पूर्णता प्राप्त कर ली, अब माला कम कर दो। हरिदास ठाकुर ने कहा मेरे मन में जो दुख है वो इसलिए नहीं है कि माला इतना नहीं कर पा रहा, एक दुख मुझे बहुत सता रहा है और वो ये है कि मुझे पता है आप बहुत जल्दी अपनी लीला समाप्त करने वाले और मैं वो देखना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि आपने लीला समाप्त कर दी, आप नहीं हैं। देखिए प्रेम था, भक्तों का प्रेम कृष्ण के प्रति, महाप्रभु के प्रति इतना था कि उनको अगर देखे नहीं एक क्षण तो उनको लगता था कि जीवन का लाभ क्या है। ऐसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, तो वो रह नहीं सकते थे उनके बिना। ये महाप्रभु ने अपनी लीला से दर्शाया कि भक्तों में कैसे प्रेम होना चाहिए। हमारा प्रेम थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद सारे उनके वो ऐसा ये करता है, वो ये करता है, उसके अंदर वो दुर्गुण है, इसके अंदर वो दुर्गुण है, प्रेम चला जाता है। महाप्रभु के भक्तों में प्रेम, इतना गाढ़ा प्रेम कि हरिदास ठाकुर कह रहे मैं देख नहीं सकता कि आप अपनी लीला समाप्त करेंगे और आप नहीं रहेंगे मेरे सामने, मैं पहले ही जाना चाहता हूं, मेरी आंखें बंद हो जाए, मैं नहीं देखना चाहता, देख नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, जब श्रील प्रभुपाद अपना देह त्याग रहे थे, वे सन्यासी थे उस समय, लेकिन वे वहां से चले गए, देह उनको पता चला कि थोड़े ही समय में, थोड़े दिनों में प्रभुपाद जाने वाले हैं, वे कहीं चले गए, बहुत समय तक, 6 महीना साल पता नहीं था कहां। और कारण एक ही था कि वो देख नहीं सकते थे कि श्रील प्रभुपाद अपना देह त्याग रहे हैं, वो नहीं रहेंगे। इस समय भी हमारे साथ में इस पृथ्वी पर बहुत से वरिष्ठ वैष्णव हैं जिनके कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं, हम जप कर पा रहे हैं। इसीलिए घबराना चाहिए वो समय जानकर कि जब ये वैष्णव नहीं रहेंगे क्या होगा इस पृथ्वी का। तो हरिदास ठाकुर ने कहा मैं नहीं देखना चाहता, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं पहले ही जाना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। और अगले दिन महाप्रभु आए, सभी भक्तों को लेकर आए। वैसे तो कभी अकेले कभी गोविंद के साथ आ जाया करते थे, लेकिन अब सबको लेकर आए और जोरदार कीर्तन कर रहे हैं। ये नगरी स्थान कीर्तन का, महाप्रभु ने जहां जहां जाएंगे हम देखेंगे महाप्रभु ने बहुत कीर्तन किया। सो वहां सिद्ध बकुल में कीर्तन प्रारंभ हो गया। हरिदास ठाकुर समझ गए कि कल मैंने जो बात कही थी आज उसको पूरा करने आए हैं। मैंने कहा था कि मैं जाना चाहता हूं, अपना देह छोड़ना चाहता हूं आपके जाने से पहले, और महाप्रभु इसीलिए आए हैं। कीर्तन हो रहा था बहुत तेज। हरिदास ठाकुर ने सभी वैष्णवों के चरणों की धूली ली। जितने वैष्णव कीर्तन कर रहे थे, हरिदास ठाकुर ने हर एक के चरण की धूली अपने सर पर लगाई। देखिए कितना महत्व हरिदास ठाकुर दे रहे हैं हर एक भक्त को। और फिर उन्होंने महाप्रभु को उसी सिद्ध बकुल, उस वृक्ष के नीचे बिठा दिया कि आप बस अब बैठ जाइए, मैं आपको देखते हुए अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं। और महाप्रभु सामने बैठे उस वृक्ष के नीचे, हरिदास ठाकुर बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे। और ऐसे में जब कीर्तन चल रहा था, भक्त जोर से कीर्तन कर रहे थे, चारों तरफ गूंज हो रही थी हरिनाम की, उन्होंने अपना मुख, अपनी नजरें, अपना दृष्टि केवल महाप्रभु पर केंद्रित की, उनका नाम लिया और देह त्याग दिया। जैसे ही भक्तों ने देखा, सब गुणगान करने लगे कि ये ऐसा जाना। देखिए हर किसी को जाना है, लेकिन हमारा जाना ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें, कि लोग सीखें कि ऐसे जाना चाहिए। और लोगों ने देखा कि ये, उन्होंने कहा तो ऐसे तो भीष्म ने छोड़ा था, क्योंकि जब भीष्म ने भी अपना देह छोड़ा श्री कृष्ण सामने थे। तो सभी लोग गुणगान करने लगे और फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा लिया और उठाकर कीर्तन करने लगे। और बहुत तीव्र कीर्तन, हाथों में हरिदास ठाकुर का शरीर है और महाप्रभु कीर्तन कर रहे। फिर जो बाकी भक्त थे, स्वरूप दामोदर इत्यादि, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा आगे की भी क्रिया करनी है महाप्रभु। तो फिर उनके शरीर को स्वयं उठाकर इस समुद्र तक आए हैं। ये जो बाहर अभी समुद्र है हमारे, तो यहां तक चैतन्य महाप्रभु आए लेकर उनको, और खुद अपने हाथों से स्नान करवाया हरिदास ठाकुर के शरीर को। उन्होंने इसी समुद्र में, यहीं सामने, जस्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे यहां से, तो हरिदास ठाकुर की समाधि है। तो वहां सिद्ध बकुल से महाप्रभु आए, यहां स्नान कराया और उन्होंने घोषणा की कि आज से ये समुद्र ये महातीर्थ है, इसमें जो भी स्नान करेगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर के शरीर को इसमें नहलाया गया है, इसमें जो भी स्नान करेगा उसको कृष्ण प्रेम मिलना निश्चित है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव इस अवसर को छोड़ते नहीं हैं कि महाप्रभु ने कहा है स्थान में स्नान करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने भी यही बताया था यमराज को कि ये जो शंख क्षेत्र है और इसके निकट ये जो समुद्र है, ये समुद्र इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी इसमें स्नान करेगा तो उसके लिए सारे पाप कटना, कृष्ण प्रेम प्राप्त होना निश्चित है। इसलिए आप सबको समुद्र स्नान तो करना ही चाहिए। हमें हर कार्य कर लेना चाहिए, पता नहीं किससे हमारा उद्धार हो जाए। धाम में आए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, स्नान करेंगे इत्यादि। तो ये सिद्ध बकुल में ये वो वृक्ष, इसीलिए वो सिद्ध हो गया। और एक कारण उसका सिद्ध बकुल कहलाने का, आपको याद है अभी तक कितने कारण बताए सिद्ध बकुल के? हाँ, कौन कौन से? पहला एक ही कारण बताइए, महाप्रभु ने अपने हाथों से उसको आरोपित किया है। तो पहला कारण तो स्वाभाविक है, जो भगवान के हाथों से आरोपित वो तो सिद्ध है ही। दूसरा कारण, हरिदास ठाकुर उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरिनाम करते थे, वेरी गुड। तीसरा कारण, देह त्याग वहीं पर किया और चैतन्य महाप्रभु उसी वृक्ष के नीचे बैठे। एक और महत्वपूर्ण कारण, हरिदास ठाकुर चले गए और उसके बाद और लोगों ने वहां पर सेवाएं प्रारंभ की। सो एक भक्त जो सेवा किया करते थे वहां, एक समय राजा के कुछ सैनिक आए। सो ये स्थान था, यहाँ के जो राज पुरोहित या राजा के जो पुजारी थे, पुरोहित थे, उनका घर था। सो जब चैतन्य महाप्रभु आए नहीं थे, दक्षिण भारत यात्रा पे थे, तब राजा से कहा गया कि महाप्रभु आने वाले और उनके लिए कोई एक स्थान चाहिए। राजा जान चुके थे, उनको समझाया जा चुका था कि ये भगवान है, तो कोई स्थान चाहिए और ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ मंदिर से ज़्यादा दूर ना हो और एकांत भी हो। ऐसा नहीं कि भीड़ भाड़ वाला स्थान है तो कहाँ रहेंगे, लेकिन मंदिर से दूर नहीं। तो राजा ने ये स्थान कहा कि जो काशी मिश्र का घर है, ये उनका घर था, या इसको श्री श्री राधा कांत मठ भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बताया राधा कांत जी वहाँ पर हैं। तो जब हम लोग जाएंगे गंभीरा में तो प्रवेश करते तो पहले राधा कांत जी के दर्शन होते हैं, और आप सब पहले दर्शन कीजिएगा। और ये वही राधा कांत जी हैं जो जगन्नाथ जी की प्लेट से अच्छी अच्छी चीजें निकाल लेते थे। तो इसको राधा कांत मठ भी कहते हैं, गंभीरा भी कहते हैं, काशी मिश्र का घर भी है। तो महाप्रभु ने वहाँ रहने का उनका निर्णय हुआ कि वहाँ रहेंगे। सो उस स्थान में बहुत सी लीलाएं की हैं महाप्रभु ने। आप देखेंगे बहुत छोटा सा कमरा है, एक समय की लीला हम बता रहे कितना छोटा। एक समय की लीला है कि महाप्रभु कहीं से भोजन कर आए थे, बहुत थके हुए थे, नींद आ रही थी, तो दरवाजे पर ही लेट गए। सो दरवाजे पर लेट गए और दरवाजे पर ऐसे लेटे कि जो उनका सेवक थे वो अंदर भी नहीं जा पा रहे थे। उनको चरण सेवा करनी थी, पांव दबाने थे महाप्रभु के, क्योंकि नियम था वो प्रसाद ले लेते थे तो फिर वो पांव दबाते थे, फिर महाप्रभु सो जाते थे, उसके बाद फिर वो जाते थे और फिर वो प्रसाद लेते थे। तो अब उन्होंने क्या देखा कि महाप्रभु लेटे हुए हैं और कैसे मैं अंदर जाऊं, मुझे उनकी बॉडी को क्रॉस करना पड़ेगा और शरीर को पार नहीं करना चाहिए, ऐसे नाप क्या बोलते हैं, लांघना नहीं चाहिए। क्यों नहीं लांगना चाहिए? हृदय में परमात्मा है, जब परमात्मा हृदय में होते हैं तो अब आप लांग नहीं सकते हैं, इसीलिए किसी के शरीर को लांगा नहीं जाता है। हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था शरीर को लांगना नहीं है, हम लोग सोचते थे क्यों, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन शरीर हृदय में परमात्मा होते हैं। तो वो कैसे, और ये तो महाप्रभु हैं स्वयं, कैसे लांगे? तो फिर उसने क्या किया, कपड़ा रखा उनके शरीर पर और लांग गए और फिर जाकर सेवा की। उसके बाद महाप्रभु सो गए। फिर बहुत समय बाद महाप्रभु उठे, उन्होंने देखा वो वहीं बैठे हुए, तो उन्होंने पूछा तुमने प्रसाद लिया? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं लिया? ले आप रस्ते में हो, मैं जाऊंगा कैसे? तो महाप्रभु कहते ऊपर से चले जाते हैं, शरीर को तो नहीं लांगना चाहिए। महाप्रभु आए कैसे? शरीर को लांगना नहीं चाहिए तो आए कैसे? तो उन्होंने कहा मैं तो कपड़ा रख कर आ गया था। तो बोले कपड़े रख के चले जाते फिर जैसे आए थे। तो उसने कहा नहीं, आया था मैं आपकी सेवा के लिए, इसलिए आपकी सेवा के लिए मैंने नियम तोड़ दिया। नियम क्या था कि लांगना नहीं है, लेकिन आपकी सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने नियम तोड़ दिया कि नियम तोड़ने का मुझे अगर दंड भी मिले तो कोई बात नहीं, आपकी सेवा होनी चाहिए। लेकिन गया इसलिए नहीं क्योंकि मैं अपने भोजन के लिए जाना चाहता था, तो उसके लिए मैं नियम नहीं तोड़ सकता। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो ये बता रहे कि इतना छोटा सा वो कमरा है और महाप्रभु काफी लंबे थे लेकिन वो उसमें ही रहा करते थे। गंभीरा उसको इसलिए कहते हैं कि गंभीर मतलब बहुत अंदर का स्थान। तो ये जब हम लोग घुसते हैं, पहले एक मेन गेट आएगा, उसके बाद और एक दरवाजा आएगा, उसके बाद राधाकांत जी का मंदिर आएगा, उसके बाद बरामदा आएगा, उसके बाद अंदर जाकर और भी वो गंभीर स्थान है। तो एकदम अंदर ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे वहां रहा करते थे चैतन्य महाप्रभु। तो इस स्थान में उन्होंने बहुत सी लीलाएं की, सब भक्त आते थे उनको मिलने के लिए वहीं पर उसी स्थान पर। सो बहुत सी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की वहां गंभीरा में जो उन्होंने की। और विशेष गंभीरा का महत्व तो क्या है, महाप्रभु 12 वर्ष तक यहाँ उस भाव में रहे, कृष्ण के स्मरण के भाव में, तीव्र भक्ति के भाव में, एक दिखलाने के लिए कि भक्त को जब भक्ति की ऊंचाइयों पर रहते हैं तो किस भाव में कैसे रहना चाहिए या क्या उनके अंदर भाव प्रकट होते हैं। सो महाप्रभु ने उस स्थान को, उस स्थान में रहकर इस चीज़ों को दिखलाया है। सो हम लोग वहाँ भी जाएंगे। और फिर जगन्नाथ मंदिर, वहाँ तो बहुत है। जाने से पहले आप सब ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन के अलावा भी बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और उनमें से एक है आनंद बाजार, जिसमें आज शाम को आप लोगों का सब प्रसाद की व्यवस्था वहीं है ना। हमने सुना कि सब आनंद बाजार में प्रसाद लेने वाले। तो कितने लोग ले सकते हैं वहां पर प्रसाद? 1,00,000 लोग आराम से ले सकते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा कि प्रसाद मिलेगा वहां या नहीं मिलेगा। सो वहां पर अगर हो सके तो हम लोग सब साथ में रहेंगे, तब तो किचन वगैरह सब देख लेंगे। अगर आप सब साथ में नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश, भीड़ के कारण, तो कृपया भगवान का किचन जरूर देख लीजिएगा कैसे बनता है भगवान के लिए भोग। और भगवान को तो देखेंगे ही, जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिएगा, और साथ साथ प्रदक्षिणा एक बार कर लीजिएगा। और वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है, रोहिणी कुंड छोटा सा वहीं बना हुआ है, कल्पवट या कल्प वृक्ष वहाँ पर है। सो जब वहाँ जाएंगे तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत कहने का प्रयास भी करेंगे। आपको बड़ी जल्दी जाने के, अच्छा ओके, रोहिणी कुंड पे आप लोग कुछ चेंज रख लीजिए, 10 रुपये नहीं होगा तो हाथ नहीं लगाने देंगे। ऐसे पिछली बार हम लोग गए थे शायद ऐसा अभी लेते, अच्छा ओके। इससे हमें एक बात याद आ रही है, कई साल पहले हम रथ यात्रा में आए थे, तो उस समय रथ यात्रा के बाद रथ पहुंचता था गुंडीचा मंदिर, तो वहाँ हरेक को रथ पर चढ़ने की अनुमति थी, कोई भी रथ पर चढ़ सकते थे और भगवान को आलिंगन कर सकते थे रथ पर चढ़कर। तो हम भी चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम लोग इस्कॉन वाले हैं ना, वो आदत नहीं है धक्का मुक्की करने की, तो हमसे तो हुआ नहीं, हम वापस आ गए। हमने कहा नहीं बहुत भीड़ है, नहीं जाएंगे, छोड़ दूर से दर्शन कर लेते हैं। तो हम जा रहे थे तो पीछे से एक पंडे ने आवाज़ लगाई, जो पीछे था रथ पे सब लोग आगे से चढ़ रहे थे, ये पीछे से चढ़ रहा था। तो उसने आज लगे प्रभु जी प्रभु जी, अपने कहा प्रभु जी तो केवल इस्कॉन वाले बोलते हैं, मतलब ये जानता होगा इस्कॉन वालों को। तो हमने कहा हाँ, बोले जाना है आपको ऊपर, हमने कहा हाँ, बोले आ जाओ इधर से। उसने हमारा हाथ पकड़ के ऐसे खींचा ऊपर, तो हम आगे की जगह पीछे से चढ़े रथ पर। तो खैर किसी तरह कहाँ कहाँ से चढ़कर ऊपर पहुंच गए, तो अब हम जगन्नाथ जी के एकदम सामने खड़े हैं, रथ है, रथ पे खड़े हैं जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी यहाँ पर है। और हमें कहा गया कि आलिंगन करना है, हमें डर लग रहा है। हमने कहा भगवान को ऐसे स्पर्श करना हमारी कोई योग्यता नहीं, आलिंगन करें हम तो। हम दूर ही खड़े थे कि नहीं नहीं, हम तो केवल प्रणाम करेंगे, हम नहीं। सब कह रहे हैं चलो चलो, नहीं नहीं, दूर खड़े। फिर हमने देखा कि कोई भी आ रहा है, जीन्स पहने, टी शर्ट पहने, बोलो सब आलिंगन कर रहे हैं। हमें, हमने तो धोती पहनी है, हम तो कर सकते हैं। तो हमने कहा हम भी कर लेते हैं। तो हमने भी आलिंगन कर लिया। हमने जैसे आलिंगन किया और आने लगे तो उठ ही नहीं पाए, वहीं अटक गए। हमने कहा ये जगन्नाथ जी क्या क्या लीला कर रहे हैं, कम से कम उठने तो दे। एक्चुअली जगन्नाथ जी ने, उनका पंडा पीछे बैठा था, उसने हाथ पकड़ लिया हमारा, बोलता पैसे दो। ऐसे आलिंगन किया हुआ ऊपर ही नहीं आ पा रहे हैं, और वो हाथ पकड़ के वहां से पैसे दो बोल रहे हैं। हमने कहा रे, तो वो फिर उसको कह रहे नहीं है नहीं है नहीं है। यहाँ पर अगर आप बोलो पैसे नहीं है तो वो लोग बड़ा बुरा मानते हैं। तो फिर वो ऐसे ही अटक गए थे। तो ये प्रभु जी कह रहे भाई 10 रुपये नहीं देंगे तो स्पर्श नहीं करने देंगे। वो जाने ही नहीं दे रहे थे कि पैसा नहीं देंगे तो नहीं होगा। हमारा पहला अनुभव भी आपको कई बार बता चुके हैं कि यही अनुभव था हमारा पहला जगन्नाथ मंदिर में। आप लोग में से कौन पहली बार, बहुत लोग जा रहे हैं, ओके आपको सुना देते हैं। हम जब पहली बार आए थे तो ऐसे ही यात्रा में आए थे, करीब 1500-2000 भक्त थे जिनके साथ हम आए थे पहली बार। हमें जगन्नाथ मंदिर का कुछ नहीं पता था, बस एक उत्साह था कि हमें दर्शन करने दर्शन करने। तो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कोई अकेले नहीं जाएंगे, सब साथ में जाएंगे। हमने व्यवस्था की रखी है, सब साथ में जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं हर यात्रा में अति उत्साही भक्त होते हैं हमारे जैसे, जो कोई नियम का पालन नहीं करते, निर्देश नहीं सुनते। हमने भी नहीं सुना, लेकिन हमारी आशा आप लोगों से ये नहीं है। ऐसी परंपरा पालन मत कीजिए। सो हम चले गए कि नहीं नहीं, पहले हम सबसे पहले दर्शन करेंगे। भाग कर तैयार होकर हम पहुंच गए अंदर। जैसे ही हमने, जो दरवाजा है एक सीधे और उससे अंदर सीढ़ियां, जल्दी जल्दी चढ़कर गए। अच्छा, सीढ़ी चढ़ने में ध्यान रखिएगा, तीसरी सीढ़ी काले रंग की है पूरी, उस पर रखना है नहीं रखना है, जाते समय रखना है, आते समय नहीं रखना, ठीक है? ध्यान, वो यम सीढ़ी है, यमराज जी का। तो उनका, उस पर पाँव रख के जाएंगे तो सारे पाप खत्म। वापस आके पाँव रखा तो वापस लेके आओगे सारे पाप, ऐसा मान्यता है। हरे कृष्णा, अभी सुनना बाकी है। सो हम भागे, जल्दी जल्दी गए, हमने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, मान लीजिए जैसे भाग भाग के पहुंचे हैं, अंदर घुसे दरवाजे में, एक व्यक्ति आया, उसने हमारे गले में हार डाला। हमने कहा वाह हरि बोल, हम तो शुद्ध भक्त हो गए। हमारे मन में यही आया कि देखो भगवान जगन्नाथ जी को कैसे पता कि हम आ रहे हैं। उन्होंने अपने भक्त को भेजा हमारा स्वागत करने के लिए, कितने बड़े हम महान भक्त हैं। उतना ही नहीं, उसके, उसकी टोकरी थी उसके हाथ में, उसमें स्वीट था, उसने स्वीट खिलाया। हमने कहा हम नहीं खाते, पूरा मुंह में डाल दिया स्वीट। हमने कहा इतना प्रेम दिखला रहे जगन्नाथ जी। फिर उसने कहा पैसा दो। वो सारे शुद्ध भक्ति चली गए। हमने कहा अरे अभी हम सोच रहे थे शुद्ध भक्त हो गए, उसके पैसा दो। तो हमने कहा पैसा तो नहीं है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी है, पैसा नहीं है। उसने हार वापस निकाल लिया। ये तो अच्छा हुआ वो स्वीट खा लिया था, नहीं तो वो तो मुंह से ही बाहर निकाल लेता, इतना मतलब लग रहा था। सो ये होने वाला है आप लोगों के साथ भी। तो ये मत सोचिएगा आप शुद्ध भक्त हो गए। हमने भी यही सोचा था, लेकिन वो वहां का नियम है, वो हर एक के साथ करते हैं। हमें बाद में पता चला कि वो हर एक के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे स्वागत के लिए किसी को भेजा। सो खैर, यहाँ बहुत सी ऐसी बातें और होती हैं। हम चाहते हैं आप लोग थोड़ा सा अनुभव कर लें, फिर कल आपको और बातें सुनाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।